نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رمضان کے بالکل قریب ہیں اور پورا سال جس مہینے کا ہم سب سے زیادہ انتظار کرتے ہیں وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک مہینے کی بہترین تیاری کا موقع دیا کوئی بھی کام جو ہم تیاری کے ساتھ کرتے ہیں اس کے کرنے میں اور جس کام کو بغیر تیاری کے کریں بہت فرق ہوتا ہے حتیٰ کہ شادی جیسا کوئی خوشگوار موقع ہو اور آپ بغیر ذہنی اور جسمانی تیاری کے وہاں بھی پہنچ جائیں تو آپ خوش نہیں ہوتے آپ کا دل ایسے بوجھل ہو جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آئی بالکل اسی طرح سے انسان کا موڈ چینج کرتے ہوئے اس کو اپنے آپ کو کسی آنے والی چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے یہ جو وضو سے لے کر نماز کے بیچ کا جو وقت ہے یا اذان سے لے کر نماز کے بیچ کے جو 15 منٹ تقریباً ہوتے ہیں یہ ذہنی تیاری کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں اکثر لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز پڑھنی آسان ہے پر وضو کرنا مشکل ہے کوئی کہتا ہے میں نمازیں ضرور پڑھوں اگر وضو نہ کرنا پڑے ایسے ہی ہے نا تو یہ وضو کرنا اصل میں کیا ہے کہ اب تم ایک رب کے سامنے ایک ایسی ہستی کے سامنے جا رہے ہو کہ جو تمہیں بہتر جانتا ہے جس کے سامنے تمہاری ہر وہ چیز ہے جو تم دوسروں سے چھپا سکتے ہو تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے وضو کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم دنیا میں کوئی بھی کام اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں ہمارے کلچر میں عموماً شادی کی بہت تیاریاں ہوتی ہیں کئی مہینے کے بعض دفعہ تو پورا پورا سال گزر جاتا ہے ہر طرح کے مراحل سے نبٹتے ہوئے پھر اصل موقع تک آتے ہوئے تو ہم اب رمضان کے لیے کیا کریں تو آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی وہ کیا ہے کہ رمضان کا انتظار کریں جب بھی کسی چیز میں کسی انسان کے ساتھ کسی کھانے کے لیے کچھ پہننے کا کوئی بھی چیز جس کا ہمیں شوق ہوتا ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی خوشگوار ہوگی تو ہمیں اس کا انتظار لگ جاتا ہے عموماً لوگ کس کس چیز کا انتظار کرتے ہیں سیل کا انتظار کرتے ہیں سیل کب لگے گی کپڑے سستے کب ہوں گے جوتوں کی سیل کب لگے گی اور ہم انتظار کرتے ہیں مثال ہے کہ جو جاب کرتے ہیں مرد یا خواتین بھی وہ مہینے کے شروع کا انتظار کرتے ہیں کہ کب پے ملے گی پھر اسی طرح سے ہم نے کسی بھی جگہ سفر کرنا ہو تو ہمیں انتظار لگ جاتا ہے تو اگر ہم رمضان کے بارے میں اپنے دل کو ٹٹولیں ہم اپنے اس رمضان کا کیا کریں انتظار کریں اور ہم جانتے ہیں کہ جس مہمان کے آنے کی خوشی بہت ہوتی ہے نا اس کا انتظار کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ اب تو وقت نہیں گزر رہا ہے گھڑی رک گئی ہے اپنے دل سے پوچھئے کیا مجھے رمضان کا انتظار ہے اور ایک ایسے مہمان کی طرح کہ جس کو ملنے کو انسان کا دل بے چین ہے جس کو دیکھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا جہاں محبت ہوتی ہے نا تو انسان وہ صحابی کی طرح کہ جن کے چہرے پہ بڑی اداسی تھی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آج میں بیٹھا ہوا تھا نا تو مجھے ایک دم ایک خیال آ گیا جس نے مجھے اداس کر دیا اور وہ خیال کیا تھا کہ آج میں مدینہ میں ہوں آپ بھی مدینہ میں ہیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں مجھے ایک دم آپ کی یاد آتی ہے تو میں فوراً اٹھ کر مسجد نبوی میں آتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کو دور سے بھی دیکھ لیتا ہوں کبھی ملتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اسی طرح کبھی میں اپنے کام پہ ہوتا ہوں مجھے وہاں آپ کا خیال آتا ہے تو میں فوراً آ کے آپ کو مل لیتا ہوں جس چیز نے آج مجھے اداس کر دیا جس چیز نے میرے دل میں اداسی بھر دی وہ کیا تھی کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں اس مقام پر تو نہیں ہوں گا جس پر آپ ہوں گے کیونکہ آپ کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام رکھا ہے کوئی دوسرا اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا تو میں نے یہ سوچا کہ اگر وہاں میرا دل آپ کے لیے اداس ہوا تو پھر میں کہاں جاؤں گا پھر میں کیسے دکھوں گا اس چیز نے مجھے اداس کر دیا یہ بات سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ اے صحابی غم نہ کرو المرء ما من احب कि आदमी उसी के साथ होगा जिसे वो मोहब्बत करता है। और साहबा कहते हैं कि हमें इससे बहुत खुशी हुई। तो जब आपको किसी से भी मोहब्बत होती है, हम हर रिश्ते को अपनी इस चीज में परख लें, माँ की बच्चों से, बच्चों की माँ बाप से, भाई बहनों की, जिसको मिले हुए करसा लग जाता है, तो हमारी आंखें थक जाती हैं कि अब आ जाओ, अब मिल लो, अब गले से लगना है, अब एक दूसरे को देखना है। तो हमें रमजान के बारे में ये देखना है कि हम रमजान का इंतजार करें। दूसरी बात देखिए कि अपने दिलों की कैफियत को चेक कीजिए, क्या मुझे रमजान का शौक है या उसका खौफ है। अगर रमजान का तस्वुर आते ही आपके दिल में मोहब्बत भरती है, शौक आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कि आपके अंदर तकवा है, आप उस मेहमान के आने की तैयारियां कर चुके हैं। हम जानते हैं कि किसी से मिलने का कितना भी शौक क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने तैयारी ना की हो और मोहब्बत में करें, हाय मेहमान आ रहे हैं, हाय पाकिस्तान से बहन आ रही है, हाय बेटी आ रही है, माँ आ रही, तैयारी नहीं आप करते, शौहर आ रहा है, बीवी आ रही है, तैयारी नहीं करते, तो जितना वक्त कम होगा उतनी घबराहट तारी हो जाएगी। फिर चाहे तड़प भी होगी मिलने की, लेकिन कहेंगे भी थोड़ा सा और वक्त मिल जाए ना, थोड़ा घर साफ कर लें, अच्छा कुछ पका लूं, अच्छा साफ सुथरा हो जाऊं, अब ये कर लूं। तो जब हम मेहमान की बातें बड़ी करें लेकिन तैयारी कोई ना करें उठ के बैठ के, तो आप सोचिए वो आखिरी वक्त भी घबराहट का होगा। आप उस बंदे को सोचिए कि जिसने एक हफ्ता पहले से हर चीज सोच के, लिख के, प्लान करके रख ली, अब उसकी कैफियत मेहमान के आने से थोड़ी देर पहले क्या होगी कि जल्दी आए वक्त। आप खाना बना लें, पुलाव वो भी बनाया हो, और मेहमान लेट हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, अब आ जाए ना, चावल ठंडे हो रहे हैं, हाय दम बैठ जाएगा, हाय अब वो चिकन जो है वो ज्यादा खुश्क होगा। यानी जब तैयारी कर ली होती है तो उसके बाद दिल चाहता है कि ये काम अब हो जाए, और तैयारी ना की हो तो कहते हैं हाय अल्लाह करे रश ही उनको मिले, हाय ये हो जाए, हाय कोई वैसा ही बन जाए, कोई मजबूरी बन जाए। सहाबे कराम जो थे वो रमजान के आने से 6 माह पहले ये दुआ मांगना शुरू कर देते थे कि अल्लाह हमारी जिंदगी में ये रमजान आए तो फिर हम इससे भरपूर फायदा भी उठाएं। और जूं ही रमजान गुजरता यानी शवाल, तो शवाल से फिर ये दुआ करना शुरू कर देते थे कि अल्लाह जो हमने रमजान में नेकियां की हैं उनको कबूल भी कर लो। तो हम सब चेक करें, अपनी नियतों को चेक करें। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चेक जो रखने की जरूरत है वो क्या है, अपनी जात पे। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम आदतन रोजे रखते हैं, दुनियावी तारीफ के लिए रोजे रखते हैं, या इसलिए कि रोजा फर्ज है इसलिए रखते हैं, और ना रखा तो गुनाहगार होंगे। नहीं, रोजा रखते हैं किस लिए रखना है, ताकि हमें उसकी खुशी महसूस हो। अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि लिसाइमी लफरहतान, दो खुशियां हैं रोजेदार के लिए, एक वो जब वो रोजे में रूह अफजा का ग्लास गले से गुजरता है, दूध सोडा पीते हैं, स्कंजवी पीते हैं। अब इन मुल्कों में रहकर इतना तसव्वुर नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो प्यास इतनी नहीं लगती है ना मौसम में, लेकिन पाकिस्तान की वो गर्मी और इंडिया की वो तलखी देखी, और बांग्लादेश में अगर गर्मियों में जून जुलाई में रोजे आए तो कितनी तलखी होगी। बिल्कुल वही वक्त जहन में आता है कि ऐसे तरीके से जब आपके गले से वो पानी का एक घूंट गुजरता है तो क्या कैफियत होती है। क्यों अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई कि ज़हब अज़माई वब तल्लत अल-उरूक़ वसबत अल-अज्र इंशाअल्लाह, प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अजर इंशाअल्लाह साबित हो गया। जब आप और मैं अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं ना, इसका अजर भी अल्लाह ही देता है। अल्लाह के नबी की कितनी प्यारी हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि असौमु ली व नजी भी, रोजा मेरे लिए और इसका अजर मैं दूंगा। तो आप इन कुछ दिनों में जो रह गए हैं इसके लिए आज से ये नियत कर लें कि मैं इस रमजान को यादगार रमजान बनाऊंगी, मेमोरियल रमजान होगा। आप देखिए कि पिछले 2 सालों से अमूमन कमो बेश कह लीजिए थोड़ा सा मुख्तलिफ गुजरा। हम सब जानते हैं 2021 का रमजान किसी हद तक, और 20 का रमजान तो पूरे का पूरा लॉकडाउन में था ना, हम कितना तरसते थे, हाय कहीं निकले, हाय तरावियां, हाय मस्जिद। और वो रमजान तो भूलता नहीं कि पूरा रमजान घर में नमाजें हुई, तरावियां, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कैसे ईद की नमाज घरों में पढ़ी जाएगी। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ये मंजर ना देखा। उस वक्त ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया के इर्द गिर्द एक बाढ़ चली गई, छाड़ गई और दुनिया बंद हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तिल कल याम मनुदा विलुहा बैनन्नास, ये तो दिन है जो हम लोगों के बीच में निकालते हैं, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे। तो अल्लाह ताला ने जितना ज्यादा आपके मेरे लिए इस रमजान में खैर रखी है, इसको हमने इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से लेना है। दिलों को साफ कीजिए, घरों को साफ कीजिए, अपने इर्द गिर्द की मट्टी झाड़े, दिलों पे कई दफा गुबार आ जाता है, रिश्तों से हम नाराज हैं, सगे भाई बहन। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप डेनमार्क में हैं, आपके बैक होम मेरा ख्याल है कि ज्यादा आप पाकिस्तान से ही होंगे, इंडिया से भी कोई हैं सिस्टर तो हाथ खड़ा कर दें, आप इंडिया से हैं। अब दोनों मुल्कों का नाम लेना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान या इंडिया में कोई हमारा ऐसा अजीज या रिश्तेदार तो नहीं कि जिससे मैं नाराज हूँ, जिससे दिल मैल है, जिससे दिल खट्टा है? हकीकत यह कि हमारे दिल इतने ज्यादा मैले रहते हैं जितने बर्तन मैले नहीं होते, और दिल इतना खट्टा है जितना के कह लीजिए कि लीमू भी नहीं खट्टा होगा। बात बेबात छोटी छोटी बातों पे भाई बहनों में नाराजगियां। मेरे घर रिश्ता नहीं दिया, लिया नहीं, लेके छोड़ दिया, मेरी बेटी उसके घर है, खुश नहीं है। खून के प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं और हम छोटी छोटी बातों पे उसको इधर उधर डाल देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम दुनिया की जन्नतों में बस रहे हैं, यहाँ किसी किस्म की कमी नहीं। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जिन सड़कों पर हम चलते फिरते हैं, क्या ये हमारा हक था? हक नहीं था, ये अल्लाह की देन है। तो आज से नियत कीजिए कि हमने इन 15 दिनों में रूठे हुओं को बनाना है। यहाँ बैठ के सोचिए, भाई बहनों से दिलों में कोई कदूरत है? कोई नाराजगी है? ससुराल के साथ ताल्लुक कैसा है? क्या करती हूँ? किस तरह का मामला है मेरा? बस आप उसके बाद फौरन नियत कीजिए, क्या मेरे मालिक, मैं आज से अपने दिल को साफ करना शुरू करूंगी। चुन चुन के, कुरेद कुरेद के अपने दिलों को इस तरीके से साफ कीजिए कि जरा भी गंदगी ना रहे। माशाल्लाह सफाई पसंद होते हैं ना खवातीन, एक एक सिलवट भी चादर से उठाती हैं, फिर इसी तरह से आप देखिए कि कभी मॉप करते हैं, कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कमरा साफ हो जाए, घर साफ हो जाए, हर चीज साफ हो जाए। तो क्या हम रमजान से पहले दिलों को साफ नहीं करेंगे? फिर कई दफा हमारी नियतों में बिगाड़ आ जाता है, नियत बिगड़ जाती है। हम किसी के साथ अच्छा इसलिए करते हैं कि वो हमसे अच्छा करता है। अब वो अच्छा करेगा तो हम अच्छा करेंगे, वो अच्छा नहीं करेगा तो हम अच्छा नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये रमजान हमारे लिए बहुत खैर लाएगा, मोमिन की रमजान की जिंदगी और गैर रमजान में बहुत फर्क नहीं होता। अल्लाह ताला इसी फर्क को मिटाने के लिए रमजान लेकर आता है। मसलन कैसे, आप देखिए नाश्ता सुबह में करते थे, फजर के बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, वो फजर से पहले कर लिया, खाने में ये हो गया। सारा दिन खाने की आदत ही नहीं थी, वैसे भी जब खाने की आदत नहीं थी तो रोजे में भी भूल नहीं लगती। शाम को डिनर या आप 4-5 बजे करते थे मगरिब से पहले, अब मगरिब से बात कर लिया। फर्क उनको लगता है जिनको हर थोड़ी देर बस स्नैक्स चाहिए, मामा चिप्स, मामा बर्गर और चॉकलेट खा लो, अब मुझे ये बना दें। हमारा कल्चर अब खाने के गिर्द घूमता है। एक एवरेज खातून जो है उसका सबसे ज्यादा वक्त घर में किचन में गुजरता है। हर बात पे बच्चों की बात मानना, अब ये बच्चे तो सारे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मैं आपके खिलाफ कर रही हूँ आपकी माओं को, कि सारा दिन फरमाइशें पूरी करनी। साहब एक खजूर पे पूरा दिन गुजार देते थे, एक खजूर। और जो सफर में हो, जो जंग के लिए जा रहे हैं, सख्त गर्मी भी है, पांव में जूते नहीं, सवारियां नहीं, वो एक खजूर खाकर अपना मकसद पूरा करते रहे तो उनको रोजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हर बड़ा काम रमजान में हुआ, मक्का फतह रमजान में हुआ, हिजरत रमजान में। हम कहते नहीं ठहर जो ईद के बाद करेंगे, कौन सा हिरकल आ गया था, कौन सा दुश्मन आ गया, आज सुबह भी पढ़ के आए हैं, चलो बाद में जाएंगे, नहीं जरा ईद आ जाए, रमजान गुजरते ना, हिजरत ही करनी है बाद में कर लेंगे। नो, इसलिए कि सहाबा को तो याद भी नहीं होता था कि कब खाया था, हमें बहुत फर्क पड़ता है और हमने अपने बच्चों को भी बिगाड़ दिया। दूसरी बात है, रमजान में भी मोमिन गीबत नहीं करता तो बगैर रमजान भी नहीं करता। गैर शरई काम देखना, सुनना, पढ़ना, ऐसी जगहों पे जाना मोमिन रमजान से बगैर भी नहीं करता, उसमें भी नहीं करता। तो मोमिन के रमजान और गैर रमजान में 19-20 का फर्क होता है, बस जमीन आसमान का फर्क नहीं होता। ये फर्क मिटाना है। रमजान हमारा ट्रेनिंग का महीना है। आपको पता है अरब लोग अपने घोड़ों को रोजे रखवाते थे क्योंकि जब उनको जंगों में लेके जाना होता था, कई के दिन खाना ना मिलता, कई के दिन पानी ना मिलता, तो परेशान होते थे। तो रोजा नफ्स के घोड़े को लगाम डालने का नाम है। आप नियत कीजिए इस सवा बच्चों के समय, तभी कर ले, एक चीज बनेगी। हम जो इफ्तारी पे एक ढेर तुमार खानों का जमा कर लेते हैं, क्या वो मकसद है रोजे का? एक दिन एक, एक फ्राई चीज एक। आज अगर समोसे हैं तो पकोड़े नहीं बनेंगे, रोल नहीं बनेंगे। अगर चाट आज बन गई तो दही बड़े नहीं बनेंगे। अगर आज चावल बन गए हैं तो अब उसके साथ कोई 4 सालन नहीं बनेंगे। आज अगर रोटी बन गई है तो आज उसके साथ बस एक दिन दाल रोटी भी होगी। कभी एक चीज करके देखिए, आपका रोजा भी अच्छा और फोकस कीजिए, वक्त को गुजारिए कुरान के लिए। आप देखिए हमारी जात के ना दो तकाजे हैं, जैसे भूख और प्यास है ना, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। इसी तरह हमारे जिस्म की एक जाहिरी जरूरतें और एक रूहानी जरूरतें हैं। ये जो जाहिरी, ये देखे ना, प्यास लगी पानी पी लिया, सर में दर्द हुआ चाय पी ली, भूख लगी खाना खा लिया, ये जिस्मानी जरूरतें हैं। एक रूहानी का जरूरत है। अल्लाह ने हमें जिस्म और रूह का मुरक्कब बनाया है। मिसाल देखिए कि आप मुझे और मैं आपको देख रहे हैं, ये हमारी जाहिर है, लेकिन एक अंदर रूह छुपी हुई है जो आपकी मुझे नहीं दिखती, मुझे आपको नहीं, हमें अपनी भी नहीं दिखती। हमारा असल वजूद वो रूहानी वजूद है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया था तो उसमें फनफख्तु फीही मिन रूही, फिर अपनी रूह डाल दी थी तो आदम जिंदा हो गए थे। हमारी रूह आसमान से आई है। और कुरान कहाँ से आया है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो क्या पता चला कि हमारी रूह और कुरान हमजोलियां हैं, सेम कंट्री से हैं, सारे इंडो पाक से हैं। अब जब हमारी रूह कुरान सुनती है तो उसको ऐसी खुशी होती है जैसे अपनी फ्रेंड को, बचपन की दोस्त को मिलकर खुशी होती है। जिस्म चूंकि मट्टी से बनता है, आदम तो मट्टी से बनाए गए, बच्चा पैदा होता है वो जिस मादे से पैदा होता है वो जमीनी चीजों को खा के, है ना, सब्जियां हैं, फल हैं, हम खाते हैं, दूध पीते हैं तो वो गाय भैंस जमीन से चारा लेती है। हर चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जमीन से ताल्लुक रखती है। तो मट्टी का वजूद मट्टी से निकली हुई चीजें मांगता है। रमजान में अल्लाह ताला चाहते हैं कि इसकी जरूरतों को दबाओ, पूरे दिन में 4-5 घंटे किचन में मत खड़े हो, बंद कर दो किचन, 10 घंटे कुछ नहीं करना, ताकि उस वक्त तुम इस रूह का खाना खाओ। तो दो दस्तरखान है दुनिया में, दो ही किस्म के भूख है, एक कुरान का दस्तरखान है और एक ये जो अल्लाह ने दुनिया में समरात और खाने दिए। खाइए पकाइए, ये नहीं कहते कि ना पकाए, लेकिन ये मकसद जिंदगी नहीं है। इस दफा नियत करें, कुरान चूंकि रमजान में नाजिल हुआ था, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो मैंने इस साल एक कुरान जरूर पूरा सुनना है। कुरान पढ़ने से फायदा इतना आप नहीं उठाते, जबकि आपको सही पढ़ना भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रही, और पढ़ने के दौरान कई और वसवसे हैं। आप सूरत फातिहा से शुरू करें, और ये जो जिसको हम दौरे कुरान कहते हैं, कोई सिस्टर ऐसी हैं जिनको नहीं पता कि दौरे कुरान क्या होता है, आपको रवां तर्जमे के साथ कुरान सिखाया जाता है। आपके घर में कोई तर्जमे वाला कुरान है, आप वो सामने रखकर जो हम लोग पेश करते हैं इस पे टीवी पे, उस पे हम तर्जमे की स्लाइड्स दिखाते हैं कि उसमें पूरा रीडिंग मटीरियल तर्जमा लिखाता है। इवन आपको कुरान भी नहीं थामना पड़ता, वो सामने खुला होता है, बस आपने जैसे बैठे ऐसे बैठ के सुनना है, फोकस करके, माहौल बना के। बस उसके बाद 2.5 घंटे में तर्जुमा भी आ जाता है, उसमें पॉइंट्स भी आ जाते हैं, और हर साल हम डिफरेंट थीम्स के साथ करते हैं, और भी बहुत सारे लोग करते हैं। आप किसी और का सुन ले, मैं नहीं कहती कि आप नूरुल कुरान पे सुनिए, जिसकी बात जो बात आपको समझ आती है, जिसके बाद दिल करता है कुछ अमल करें, उसको सुनिए। तो इस साल नियत कीजिए हमने रमजान से भरपूर फायदा उठाना है। पर बच्चों का भी प्रोग्राम हर साल होता है, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है, और हिट होता है, पूरा साल उसकी फरमाइशें होती हैं, बल्कि आप मुस्तकिल वीकेंड्स पे भी क्लासेस होती हैं, राइटियस लीडर्स के नाम पे शायद आता है। तो आपको इसी में जब आप रमजान का वेब पेज नूरुल कुरान से खोलेंगे तो उसमें नीचे बच्चों का रमजान भी आएगा, बच्चे रमजान कैसे गुजारे, एक लेक्चर है, मैं खुद दिया इस पिछले से शायद पिछले पे। आप सारे अपने इन बच्चों के साथ बैठिए कि कल बैठ जाएं, अगले वीकेंड पे बैठ जाएं, तो बच्चों के साथ बैठ के सुने। आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज दीजिए, इनको शौक दीजिए, आज तुम सबको खजूर देना, आज तुम्हारी पसंद की चीज बनेगी, कल अब्बू की पसंद की चीज बनेगी, परसों अम्मी की पसंद की होगी, फिर दादी की होगी, कहीं जाके अगले हफ्ते में आपकी बारी आएगी। बच्चों की ट्रेनिंग कीजिए। ये क्या बात हो गई कि हम उनके अंदर एक हाथ से समोसा और एक हाथ से उनके सैंडविच डाल रहे हैं कि खा लो मेरा बच्चा, तुमने रोजा रखा है, नमाजें ना पढ़ी तो रोजे का क्या हुआ, रोजा रख के सुला दिया कि अब सुनने ही नहीं, उठाना नहीं, क्योंकि ये रोजे से है। तो आदत डालनी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है कि बच्चों को इसकी रूह देनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस रमजान को बहुत ही बेहतरीन करे। जज़ाकुम अल्लाह खैर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह ताला हमारी इन सारी प्यारी बहनों का बैठना कबूल करे, हमारी इस बहन का अपने घर में बुलाना कबूल करे जिन्होंने इसमें एक लफ्ज़ से मदद की, जिन्होंने ये सारी सेटिंग की, अल्लाह उनको भी अजर अता करे, और अल्लाह ताला सब सुनने वालों को भी बेहतरीन जजा दे। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो, और अल्लाह ताला हमें खुश रहने वाला बनाए, हम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करें, हमारे घरों में दीन के साथ साथ खुशी का इजहार हो, और अल्लाह ताला हमें रमजान और गैर रमजान में अपनी नाफरमानियों से बचाए। सबके माँ बाप पे अल्लाह रहमत फरमाए। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह ताला हमारे शोहरों पे अपनी रहमत फरमाए, उनकी उम्रों में बरकत दे, उनके घर वालों को सेहत आफियत और खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे उस्तादों पे अपनी रहमतें फरमाए, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारी ज़िंदगी को ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार के हमें जाने वाला बना दे कि जब हम जाएं तो या तुहन नफ्सुल मुतमईना की आवाज़ें आ जाएं, और जो जिसके दिल में है जो ये सोच भी रहे हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से भी वो दुआएं कबूल फरमा, और इन बच्चों को भी अल्लाह ताला बहुत ही कामयाब जिंदगियां अता फरमा, इनको अभी से नमाज से रोज़े से या अल्लाह मोहब्बत पैदा हो, और इनकी बेहतरीन तरबियत करने की सबको तौफीक अता फरमा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।